ओम शांति। आज इस संध्या वेला में हमारे बीच सरल शांत स्वभावी आदरणीय भगवान भाई जी उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से भाई जी का स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन। आप वरिष्ठ अनुभवी समर्पित राजयोग शिक्षक है। आपका जीवन तपस्या, सादगी और ज्ञान का ही प्रतीक है। आपको आध्यात्मिक साहित्य और ज्ञान के जटिल पहलुओं को सरल भाषा में समझाने के लिए जाना जाता है। आपका व्यक्तित्व सादगी एवं विनम्रता से भरपूर है। आपकी वाणी में शांति, मधुरता और गहराई होती है। आपने भारत के हजारों स्कूल, कॉलेज एवं सेंट्रल जेल में राजयोग प्रवचन करके सभी का जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर किया है। आज ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय भगवान भाई जी हमारे बीच है। हम एक बार पुनः भाई जी का अभिवादन करते हैं और बहुत सुंदर विषय आज हमारे बीच स्पष्ट करेंगे, स्वराज्य अधिकारी सो अखंड विश्व राज्य अधिकारी।
ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है स्वराज्याधिकारी सो अखंड विश्व राज्याधिकारी। अखंड मतलब सत्युग से लेकर के हर जन्म में राजाई की प्राप्ति। वैसे तो बाबा का सीजन चल रहे हैं और जो सीजन में मुरलियां चलती हैं, वर्तमान समय बच्चों में क्या कमी है, समय प्रमाण क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, वर्तमान समय विश्व परिवर्तन का कितना समय बाकी है, इसी को देख करके मुरलियां चलती हैं। जैसे स्कूलों में जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं, तो टीचर नए लेसन नहीं पढ़ाता, जो पढ़ाया उसको क्या करता है, रिवाइज करता है। और उसमें जो महत्व के लेसन है, जो पढ़ाया था ऑलरेडी, उसमें जो महत्व के परीक्षा में खास आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन है उनको पढ़ाता है। तो अब बाबा की भले नई मुरली नहीं चलती, लेकिन जो चली हुई है, जो हमारे पुरुषार्थ के लिए जरूरी है, वही मुरलियां चल रहे हैं। और इस सीजन की सबसे पहली मुरली, बाबा ने कहा कि अपने स्वराज्य के राज्य को चेक करो, स्वराज्य के चार्ट को चेक करो और उसको चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज की भी बाबा की साकार मुरली थी, कोई भी कर्मेंद्रिय से भूले नहीं करनी है, अपने कर्मेंद्रिय को क्या करो, कंट्रोल करो, वश करो। और सारे गीता का सार भी क्या है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे गीता का सार, हमारे सारी मुरलियों का सार, स्वराज्य अधिकारी बनना। जिसको ही बाबा और एक सिंपल शब्द यूज करते हैं, बच्चे सो परिवर्तन करो। तो सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज की मुरली सुनी, अमृतवाला उठे, ये हो गया सो परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। सो परिवर्तन अर्थात हर कर्मेंद्रिया श्रीमत के आधार से चले, इसको कहते सो परिवर्तन। और जो सो परिवर्तन करेंगे, विश्व तो अपने आप, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जिसको ही अभी बाबा ने अभी की मुरली में अनुभव की क्या बनो, अथॉरिटी बनो। अनुभवी कौन बन सकता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया है, वो अनुभवी बन सकता है, अथॉरिटी बन सकता है। जिसको और शब्द में बाबा बताता है, बच्चे चैरिटी बिगेंस एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, कईयों को घर समझते ही क्या करते हैं, पति को ज्ञान में चलाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं चलते तो नाराज हो जाते हैं। हम बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेंस, सबसे पहले वो भी भले चलाओ लेकिन सबसे पहला घर हमारा कौन सा है? ये शरीर। तो शरीर में जितने भी इंद्रियां चलती रहती हैं, उन सबको ज्ञान में चलाना, इसको कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम। अब जब आपके शरीर में रहने वाली सभी कर्म इंद्रियां श्रीमत के आधार से चलेगी, ज्ञान में चलेगी, तब आपसे कोई भूले नहीं होंगी। तो आपका ये परिवर्तन देख करके घर वाले अपने आप ज्ञान में चलेंगे, आपके संपर्क वाले ज्ञान में चलेंगे, जिसको आजकल बाबा कहते हैं अपने सेवा किसे करो, चाल और चलन से, चेहरे से सेवा करो। सेवा का साधना ही चेहरा और चलन, लेकिन ये चलन और चेहरे की सेवा वही कर सकता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा है, जो स्वराज्य अधिकारी है। इसलिए वर्तमान समय आज हमारे ब्राह्मण जीवन की सभी समस्याओं की जड़ाई इंद्रियों की अधीनता, और हम क्या समझते हैं, इसके कारण मैं डिस्टर्ब हूं, इसके कारण ऐसा हूं। कारण तो कोई भी नहीं है, कारण है तो मेरी खुद की कर्म इंद्रियां। इसलिए अगर मुझे अखंड राज्य अधिकारी बनना है, इसलिए अभी से हमें ये पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया। सुना है, बाबा की एक डायरी मिली थी और बाबा उस डायरी में रोज अपना इंद्रियों का दरबार लिखते थे। कान के साथ बातें करते थे, आंखों के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ। बाबा ने अपने ऊपर यह मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने। दूसरा, बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, और इसलिए बाबा नारायण बने। किस पुरुषार्थ से? इसी पुरुषार्थ से। तो हमें भी कोई नया प्लानिंग बनाना नहीं है पुरुषार्थ के लिए। जो हमारे मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। नहीं तो दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई, क्योंकि भक्ति शुरू में क्यों किया लोगों ने? भक्ति इसीलिए किया, विकारों के कारण दुखी बने, परेशान बने हो गए, इसीलिए भक्ति करना शुरू किया, लेकिन तो भी विकार बढ़ते गए। आखिर भक्ति का रूप भी बदल गया, स्वार्थवश भक्ति शुरू किया, मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, इसके लिए हम इतने नारियल तोड़ेंगे, इतनी यात्रा करेंगे, आखिर थक करके बैठ गए। तो आखिर बाबा को आना पड़ा, और बाबा ने आकर के पहली बात क्या बताई, बच्चे तुम आत्मा हो। इस एक आत्मा के लेसन से, स्वराज्य अधिकारी स्थिति से परिवर्तन हो गया। इसलिए अब हमें, अगर कोई विकार मुझे तंग करता है, कोई संस्कार नहीं बदलते, इस सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। अभी गीत कितना सुंदर सुन रहे थे, पग पग पर अपने इस राजधानी को माया से बचाना। जो इस कर्मेंद्रे पर राज्य करता है भविष्य का राजा बन जाता है। आज कईयों की समस्या है मेरा योग ही नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? जो सारा दिन गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, गलत सोचेंगे, बुद्धि कहीं भटकेगी, वो सारी दिन की बातें योग में बैठते याद आती, इसीलिए योग नहीं लगता। अगर आंखें योग्य देखेगी, कान योग्य सुनेगा, बुद्धि योग्य देखेगी तो योग अपने आप लगेगा। कई कहते हैं मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते हैं? इंद्रियों की अधीनता। कई कहते हैं मेरे पास सहन शक्ति नहीं आती, इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। कई तो इंतजार करे सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम युग तो 100 साल का होता है, अभी तो 90 साल होने वाले हैं, अब कुछ तो दिखाई तो नहीं पड़ता। ऐसे कई विचार करते हैं, लेकिन सत्यु का गायन क्या है? एक राज्य, एक धर्म, तो क्या सत्युग हमने अपने अंदर बनाया? सत्युग में क्या मेरे मन में एक राज्य है, या कभी कभी माया का भी राज्य चलता है? सत्युग हमें अपने शरीर में बनाना है, एक आत्मा का शासन हर इंद्रियों पर, एक आत्मा का शासन, एक धर्म अर्थात धारणा, लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलना। बाबा आकर के दुनिया को बदलता है, तो दुनिया को बदलता मतलब क्या करता है? बाबा आता है और आकर के इस विद्यालय के माध्यम से ज्ञान और योग सिखाता है, और जो इस ज्ञान और योग की धारणाओं के आधार से अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करता है उसे दुनिया बदल जाती है। और जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया वही आत्मा सत्युग में जाती है, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं किया, युद्ध करते रहे, वो सब त्रेता में चले जाते हैं। और जिन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा कुमारी वाली इस तरफ से जा रहे हैं, हम इस तरफ से जा रहे हैं, जाना तो वही भक्ति करते रहे, वो द्वापरिक में आते। और जिन्होंने कहा खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है भविष्य, वो सब कहां आते हैं? ना भक्ति की, ना विकार पर जीत प्राप्त किया, खाओ पियो मौज करो, वो सब कलयुग में आते हैं। आज दुनिया में क्राइम हो रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, ये सब कौन कर रहे है? इंद्रियां। और पश्चाताप भी करते, अरे मैंने नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे किया? तो इसीलिए हमें इस कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना है। हर इंद्रियां श्रीमत के आधार से चले, और जिनकी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है वो सुखी है। जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है, बाबा ने 3 आसन दिए हैं, एक है ब्रुकुटी का आसन, दूसरा है बाबा के दिल तख्त का आसन, तीसरा है भविष्य की राजाई का आसन। और हम पुरुषार्थ किसे लिए कर रहे हैं? भविष्य की राजाई का तख्त लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भविष्य की राजाई का तख्त उनको मिलता है जो बाबा के दिल तख्त पर बैठता है। और बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, उसका व्यवहार, उसके संस्कार बाबा को अच्छे लगेंगे, वो बाबा के तख्त पर बैठेगा। लेकिन इंद्रियों पर शासन कौन कर सकता है? जो ब्रुकुटी आसन पर बैठता है, आत्मिक स्वरूप में रहता है। इसलिए संगम युग में हर पल हमें क्या करना है? इस ब्रुकुटी आसन पर बैठना है, जिसको बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके चलो। लेकिन हम आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आंखें गलत देख लेंगी, मन गलत सोच लेता है, तो इसी से फिर क्या करते हैं? हमारा आसन छूट जाता है। इसलिए सवेरे ही हमें क्या करना है? सभी इंद्रियों को ऑर्डर करना है, एक एक इंद्रियों से बात करना है, उसका दरबार लगाना है, और फिर रात के समय सोने से पहले फिर दरबार लगाना है। मैंने जो ऑर्डर लॉ बताया था उस प्रमाण चले, नहीं चले तो उनको सजा देना, शिक्षा देना। क्योंकि जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता, इंद्रियों के अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अब मुझे अखंड राज्य अधिकारी बनना है तो अखंड स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। कई तो क्या कहते हैं, कर रहे अभी, हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। संगम युग की बहुत काल के अभ्यास की प्राप्ति भविष्य का अखंड राज्य। लास्ट लास्ट में करेंगे तो कलप में भी लास्ट में कई द्वापर कलयुग में राजा बनने का चांस मिलेगा, सत्ययुग त्रेता में नहीं बनेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो कौन कौन राजा बन सकते हैं? किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब राजा बनने वाले हैं, सब इंदौर और भोपाल वाले हैं। लेकिन चेक करो क्या मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश में हैं, श्रीमद प्रमाण चलते हैं। योग में बैठे आंखें बंद हैं और मोबाइल में कुछ गलत दिखते हैं तो उस समय टकटक करते, उस समय नींद नहीं आती, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। कोई व्यर्थ बातें सुनाता है परचिंतन की, कान बड़ा नजदीक जाकर सुनता है, और क्या हुआ? वो सुनाने वाला उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना, और क्या हुआ? इसका मतलब कान मेरा ज्ञान में नहीं है। करण महाभारत का बहुत होशियार था, लेकिन करण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया, रथ फंस गया और उस समय असफल बना। इसी तरह हम ज्ञान में बहुत होशियार हैं, लेकिन अगर कर्मेंद्रिया धोखा देती हैं तो असफल बन जाएंगे। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है, ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है वो देखने का नहीं है, ये समय है स्वराज्य अधिकारी बनने का, सो परिवर्तन करने का। इसलिए मैं रोज क्या करना है, इस राजधानी को माया से बचाना है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी, सहन शक्ति रहेगी, परखने की शक्ति रहेगी, निर्णय करने की, सारी गुण और शक्तियों का आधार है इंद्रियों पर शासन। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए योग्य है वही देखना, योग्य है वही सुनना, योग्य है वही सोचना। जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है उसका हर पल सफल हो रहा है। रात को सोया है उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा हुआ है। इस मुरली में खास बाबा ने एक भी अटेंशन दिया, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ समय, व्यर्थ जो भी रीति रिवाज कुछ करते, इसको क्या करो, अब व्यर्थों से मुक्त बनो, समय को सफल बनाओ, और उसके लिए क्या चाहिए, स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। जो स्वराज्य अधिकारी ब्रुकुटी आसन पर बैठता है वो बेफिकर बादशाह है, बेफिकर बादशाह, निश्चिंत है वो। तो स्वराज्य अधिकारी बनने का हमें रोज इसके लिए दरबार लगाना, उसकी प्रैक्टिस करना, जिसे कहते हैं ना अखंड भारत। अखंड भारत अर्थात हमारी हर इंद्रिया सहयोगी बने, नहीं तो कभी क्या होता है, कान अपना अपनी चलाता है, मुख अपनी चलाते हैं, कोई किसी में तालमेल नहीं है। जो आत्मा चाहता है वही करना। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है या अच्छा नहीं है, आत्मा चुपचाप उन बात को सुनता रहता है। तुरंत आत्मा का फर्ज है, मन जिसके लिए तुम व्यर्थ सोच रहे हो। बाबा तो कहते हैं मीठे बच्चे उसको रिगार्ड देता है और तुम उसके लिए निगेटिव सोच रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा के भाई के लिए ऐसा सोचा तो। इसी तरह हमें जागरूक होकर के कौन सी कर्मिंद्रिया क्या क्या कर रहे उसको देखना, स्वराज्य अधिकारी बनना। क्योंकि शरीर हमारा क्या है, किला है। जैसे पहले राजा ही किसमें रहते थे, किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी चेकिंग होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर में हमारा किला है, इस किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, लेकिन इसमें कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको कोई हम चेकिंग नहीं करते। इसीलिए आत्मा राजे की हालत गंभीर है। जैसे कहते ना अंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं, अंधे को लग रहा है मैंने बोरी भर करके पीसा लेकिन जमा तो कुछ भी नहीं। इसी तरह हम रोज अमृत वाला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन मन व्यर्थ सोचता है, आंखें व्यर्थ गलत देखती है, कान गलत सुनता है, तो जो जमा किया उतना क्या हो रहा है, जा रहे हैं। और हम तो सोचते हैं कि मैं तो 30 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, 40 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए लीकेज होता है इस इंद्रियों के द्वारा। तो कौन सी इंद्रियां हमें धोखा देते हैं, काम क्रोध कहां से आते हैं, कान के द्वारा आते हैं, आंखों के द्वारा आते हैं, मन बुद्धि के द्वारा आते हैं। इन दरवाजों को बंद रखना, इस किले को मजबूत करना। जैसे पहले जमाने में, जैसे पहले भारत में अंग्रेज घुसे थे, तो भारत में अंग्रेज कैसे घुसे थे, भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए और किसके साथ दोस्ती की, नवाबों के साथ दोस्ती की, तो दोस्ती करते करते क्या किया, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है, एक देश है, इंडिया है, और इसकी राजधानी कहां है, यह आत्मा राजा रहता है ब्रुकुटी में। लेकिन इस शरीर रूपी देश में कई नवाब है, कौन से, कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं, कान के साथ दोस्ती कर दी, पर चिंतन की बातें सुन ली, मुख से उसको वर्णन कर ली, मन से सोच लिया, बुद्धि में चली गई, तो आत्मा के ऊपर अटैक। अब हम अधीन है, परातंत्र में है, तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं। जैसे भारत में अंग्रेज आए, भारत क्या हो गया? परातंत्र हो गया, सभी तरफ दुख चालू हुआ। इसी तरह हम भी इस माया रूपी अंग्रेज हमारे शरीर में घुसे हैं और इसीलिए आज हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो अब हमें जो विकार घुसे उनको भगाना, जैसे भारत में अंग्रेज आए थे उनको भगाए कैसे, वही नीति हमें भी क्या करना है, यहां यूज करना है। उसके लिए क्या किया, जगह जगह बस सभा लगाई, जालियांवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कुछ अखबार निकाले। मुझे लगता है भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, लेकिन लोकमान्य तिलक ने पहला अखबार चालू किया केसरी पुणे में, और लोकल भाषा में कहां क्या हो रहा है वो लिखते थे, तो जनता को समाचार मिलना शुरू हो गया। उस समय गणपति की पूजा भी उसे पहले नहीं होती थी, लेकिन स्वतंत्र काल में गणपति की पूजा चालू किया, वो भी लगता है मुझे महाराष्ट्र में चालू किया था। उससे बहाने लोग इकट्ठे होते थे और जो आपस में अंग्रेज कैसे तंग करे, क्या क्या हो रहे हैं, आपस में चर्चा करते थे। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते वंदे मातरम ये जब नारा शुरू किया था अंग्रेज उसको बोलने नहीं देते थे, क्योंकि हिंदी नहीं आती थी उनको, उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते बांधो और मारो। नारे बनाए, अलग अलग जगह पर जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हो गई तब जाकर के अंग्रेज लोग क्या किया, चले गए। इसी तरह आज हमारे शरीर में भी ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, काम क्रोध घुसे हैं, उनको भगाना है। तो हमें क्या करना है, अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता को नहीं, ये कर्म इंद्रिया। जब तक इन कर्म इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी, तब तक हम विकार जीत माया जीत नहीं बन सकते। आज आत्मा को दिल करता है कि माया जीत बनना है मैं, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। कान अगर एंट्री देता है, मन बुद्धि एंट्री देती है, तो एक संगम तो क्या, और भी कुछ समय बढ़ाएंगे तो भी आपके अंदर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। हर इंद्रियों को, इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत पैदा करना, इसको कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम, इसको कहते हैं सो परिवर्तन। ये मुख्य बातें, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं। हम कोई परिस्थिति को दोषी मनाते हैं, मानते हैं इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण, कारण तो कुछ नहीं, हमारी खुद की कर्म इंद्रियां। इसलिए अब हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। अभी नया साल चालू होने वाला है 2026, तो इस 2026 में हमें क्या करना है, ये स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी इंद्रिया मुझे धोखा ना दे, एक धर्म, एक राज्य, एक आत्मा का शासन, और तब हम सुखी बन सकते हैं। हमारे सुख और शांति का आधार, बाबा ने खास वो जो पहली मुरली सीजन की चली, बाबा ने कहा आपके सुख शांति का आधार कोई प्रशंसा, कोई प्राप्तियां ये तो नहीं है। कोई किसी ने प्रशंसा की, खुश हो गए, कुछ प्राप्ति हो गई, खुश हो गए, और कुछ हो गया तो ये नहीं। हर परिस्थिति में सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, और ये तब संभव है जब इंद्रियों जीत है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हैं, बच्चा कहां जाता है, किसके संग में जाता है, क्या क्या देखता है, क्या क्या सुनता है, उनको पूछने का देखने का उनको टाइम ही नहीं है, मम्मी पापा को। और जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम सेवा में, कारोबार में, घरों में इतना बिजी हैं, मेरी आंखों ने सारा दिन क्या देखा, मेरे मन ने सारा दिन क्या सोचा, मेरे कान ने सारा दिन क्या सुना, क्या जरूरी था, आवश्यक था, इसको देखने का, पूछने का हमको टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए अब हमें थोड़ा सा ये करके इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ करना है, और इसी के आधार से भविष्य के राजा ही हैं। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, बोलाए। बाबा ने कहा कि जो स्वराज्य, फार्मूला क्या है राजा लेने का, जो स्वराज्य अधिकारी वो क्या बनेंगे, चाहे वो गृहस्थी में रहते हैं, चाहे समर्पित हैं, चाहे नए नहीं आए हैं, लेकिन ज्ञान में चलते ही जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया, उनका व्यवहार, उनके संस्कार सबको पसंद आई, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छा ही मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर शासन है, अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य, जिस आत्मा का शासन पर बॉडी पर शासन है, उसका व्यवहार, उसके संस्कार सबको प्यारे लगेंगे, ये है पुरुषार्थ। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। कई बार एक मुरली में बाबा से कई बच्चे रूरवान करते, बाबा हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, हमें थोड़ा सा गाइडेंस करना, क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूं। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, तो ऐसे ऐसे आत्मा का भविष्य क्या होगा। ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता और इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनेगी, दास दासी। दास दासी वो बनते जो जीवन में उदास रहते हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, सत्युग में जाने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, लेकिन चेहरे में खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के अधीन होकर के कोई विकार के वश हुआ, उसको खुशी कैसी होगी, चेहरा मुरझा हुआ रहेगा। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान और योग से, वो श्रृंगार करने वाली दास दासी बनती है। इसलिए बाबा की रोज की मुरली, कितना मंदिरों में जाओ, बच्चे किसको सुनाओ, कितना बाबा कहते हैं श्रृंगार करने के लिए बोलता है। जो श्रृंगार, कई तो कामों में व्यस्त है, अगर यहां श्रृंगार नहीं कराएंगे किसी का, फिर वहां भी क्या करना पड़ेगा, फिर दासियां क्या करती हैं, राजा का या रानी का श्रृंगार करती हैं, क्योंकि संगम युग में किसी को सुना ही नहीं। और क्यों नहीं सुना सकते, क्योंकि खुद अनुभव ही नहीं करते, तो सुनाएंगे उमंग कैसा आएगा। चलो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा, साहूकार बनेगा। क्या बनेगा, साहूकार। क्यों? संगम युग में धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, लेकिन इंद्रियों के अधीन था, इसलिए क्या बना, साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा है ज्ञान योग का, और अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं, इंद्रियों पर शासन है तो वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, माना राजा तो है लेकिन संगम युग में उसने ना धन से सेवा की, ना किसी को ज्ञान सुनाया, इसीलिए उसके पास होगा कुछ नहीं, लेकिन नाम का राजा, काम का राजा नहीं है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, अपने इंद्रियों पर भी शासन है, ऐसी आत्मा संपन्न राजा बनेगी। तो इच्छे करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है, मैं क्या बनने वाला हूं, चेक करो। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, अभी भी थोड़ा समय है, पता नहीं कितना समय मिलने वाला है, उसी समय में भी अभी भी आप ट्रैक को बदल सकते हैं। इसीलिए राजा ही प्राप्त करने के लिए और अखंड राजा ही लेने के लिए हमें जब से बीके बने हमें अपने इंद्रियों पर शासन करना सीखना है, और इसीलिए रोज हमें अपना दरबार लगाना है। जैसे कोई बॉर्डर पर कोई सैनिक सुरक्षा के लिए रहता है, अगर कोई दुश्मन आता है, वो कहता है, कोई आतंकवादी आता है और कहता है ये 1500 की नोटा लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो, अगर वो लालच में आकर के वो नोटा ले लेगा, अंदर भेजेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी जो इंद्रिय है ये किसी लिए? हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए है। कान किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। ये आंखें किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन रक्षक ही भक्षक बने हैं। आज ये कर्मेंद्र ही आत्मा को धोखा दे रहे हैं और यह हमें पता ही नहीं चलता। और इसीलिए रोज हमें एकांत में बैठ करके कौन सी कर्मेंद्र मुझे धोखा देते उसको ध्यान देना, और तब हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने ये गुप्त पुरुषार्थ किया और उन इंद्रियों को सजा दी, सावधान किया। इसी से आपके संस्कार बदलेंगे, इसी से आपके अंदर गुण और शक्ति आएगी। जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या लिखता है फालतू, फाड़ के फेंक देगा उसको, माना उसका पीए हितेशी है। तो इसी तरह हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, हमारा पीए कौन है? कौन पीए? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की हमने मुरली सुनी थी कान के द्वारा, कान इसको नहीं भेजता, आज बाबा ने ऐसे बोला हुआ है, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितेशी नहीं है, अगर मेरी इंद्रियां ही मेरी आत्मा की हितेशी नहीं है तो हम माया जीत विकार जीत कैसे बन सकते हैं? इसलिए इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में अकेले मत चलो, इस माया के युद्ध में विजय प्राप्त करना है इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जब तक इंद्रियों का सहयोग नहीं है तब तक इस युद्ध में विजय नहीं मिलेगी। ये युद्ध अकेले का नहीं, आत्मा का नहीं है, इसलिए मन भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है, हर इंद्रियों का सहयोग चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे, इसीलिए घोड़ों को प्यार करता है, पुचकारता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब अमृत वाला योग करके नीचे आते हैं शरीर में, उसके बाद नहाते धोते हैं, उस समय क्या करो? अपने घोड़ों से प्यार करो, कान से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख तुमको ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। आपके सफलता का आधार है इंद्रियां। अगर यही आपको धोखा देते हैं, आप शब्द बोलेंगे, गलत देखेंगे, तो इससे नाम किसका खराब हो जाएगा? आत्मा का खराब हो जाएगा। लोग आपसे दुरिया करेंगे। राजाओं की निशानियां, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। इसी तरह इस शरीर में हम रहते हैं, हर इंद्रिया आत्मा के कहने प्रमाण से, लॉ और ऑर्डर। अगर राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो इसी तरह जो इंद्रिया हमको हमारी नहीं मानती, उसको शिक्षा देना, सावधान करना, सजा देना। और तब जाकर के जब इसमें परिवर्तन आएगा तो बाहर परिवर्तन आएगा। जब हमारी दादी जी यहां रहती थी शांतिवन में, तो दादी जी को कहीं बाहर जाना होता था, तो दादी जी क्या करती थी, क्लास में बोलती थी, देखो मैं बाहर जाने वाली हूं, जो भी मधुवन निवासी हैं आज मैं उनसे मिलूंगी। तो दादी क्या करती थी, हम लोगों को सभी को दादी मीटिंग हॉल में या कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला करके मिलती थी और सभी की बहुत महिमा करती थी। देखो ये किचन वाले कितना मेहनत करते हैं, ये आवास निवास वाले देखो कितना दिन रात मेहनत करते हैं, ये सिक्योरिटी वाले कितना मेहनत करते हैं, सबकी महिमा करती थी। आप लोग इस यज्ञ के किले के ईंटें हो, तो सबका सबको प्यार करती थी, सबको टोली खिलाती थी। उसके बाद भी तो दादी ने सबको प्यार करने से दादी सब लोग क्या करते थे, देखो सभी दिल से सेवा, दादी अगर नहीं भी होती तो दिल से सेवा करते थे। यह राजे की निशानी। अगर इतना मेहनत करते कोई पूछे ही नहीं, लगा कि हम तो क्या ऐसे काम करते, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा कारोबार में। इसी तरह आज हमारी इंद्रियां दिन रात कितना मेहनत कर रहे हैं। आज हार्ट 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अपनी ड्यूटी छोड़ देगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा आपका। फिर आज आंखें मेहनत कर रहे हैं, कान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी इनसे प्यार किया हमने बैठ करके? ये कान तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो कान बहुत मिले, तुम्हारे जैसे मुझे नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं मुरली सुनता हूँ। आज मेरा भाषण इतना अच्छा हुआ, भाषण क्यों हुआ, क्योंकि पांव का भी सहयोग था, पांव ने वहां से पैदल करके यहाँ तक लाया, फिर मुख भी बोल रहे हैं, फिर बुद्धि भी, सबका सहयोग है, तब तो जाकर भाषण अच्छा हुआ। लेकिन कभी इनको प्यार करते हैं? आज हम लंदन फोन कर लेते हैं, औरों से बात करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों से बात, तो इंद्रियों को लगता है ये राजा है क्या, क्या हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो भी कभी हमको पूछता ही नहीं, इसीलिए माया से मिली है, इसीलिए कर्म इंद्रिय माया से मिली है, इसीलिए इन इंद्रियों से कभी बैठ करके एकांत में आधा घंटा कभी निकालो और निकाल करके उनसे बातें करो। जब इंद्रियों से बातें करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, फिर कान गलत नहीं सुनेगा, आंखें गलत नहीं देखेगी, मन बुद्धि सब, और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तब हमारे जीवन में सफलता मिलेगी, तब हम माया जीत बन सकते हैं। ये है पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं? अमृत वेला करने के बाद रोज हमें क्या करना, अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है। ये शरीर हमारा एक देश है, शरीर हमारा एक ऑफिस है। तो जब अमृत वाला करके बाबा, क्योंकि शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। ये गीत में बड़ी अच्छी लाइन थी, खुदा की मेहरबानी है जो हमारी राजा ही क्या करे हमको वापस दिला रहे। तो शिव बाबा हमारा दोस्त है, वो दोस्त देखता है कि अरे मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था, इसको क्या हुआ? वो समझ जाता है कि इसके ऊपर दुश्मन ने वार किया हुआ है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे राजा तुमको प्राप्त कराऊंगा, तो मेरे पास आ जाओ। तो हमें दोस्त से, बाबा से शक्तियां लेने के लिए अमृतवाला जाना है, और जा करके फिर अमृतवाला करके आने के बाद सभी इंद्रियों से बातें करनी है। अगर अमृत वेला करने के बाद पौने पांच से लेकर के पांच बजे तक 10-15 मिनट भी हम इन इंद्रियों से बातें करेंगे, सबसे पहले बात करो कान से। कैसी बात करने? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजाई के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो हर जन्म में कान बहुत मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे कान नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने ईश्वरी महावाक्य सुने और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है। इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है? बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। लेकिन मैं आप मेरे दोस्त के पास शिव बाबा के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, और शिव बाबा तो मेरा हितेशी है, वो मेरा हित ही चाहता है, वो ऐसा वैसा इशारा नहीं देता। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना है, परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, मैं रात के दरबार में तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मेरा सीसी कैमरे का प्रबंध है। आजकल घरों में ऑफिस में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरा। तो हमारा थर्ड आई सीसी कैमरे कौन से? बुद्धि रूपी नेत्र एक्टिव है, सब पता चलता है। बुद्धि को क्या रॉन्ग देखा है, क्या किया है, सब पता चलता है। अगर उसमें कुछ गलत देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख्य पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको राजधानी में इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का परचिंतन करोगे, अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो अंकों के पास। ये अंके, मुझे 84 जन्म में बहुत अंके मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली अंके कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना, प्रभु मिलन। हमने जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया में युगों से आंखें तरस रहे, एक पांव पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहे हैं, वो साक्षात्कार करना चाहते हैं। लेकिन हे आंखें, तुमने उस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है, 20-25 बार भी देखा हुआ है कई लोगों ने, तो बोलते हुए देखा हुआ है। कई बार बाबा यहां से उठ करके हॉल में चक्कर लगाया भी, वो भी कई लोगों ने देखा हुआ है। खाते हुए देखा हुआ है, मुस्कुराते हुए देखा हुआ है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें तुम क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं इस सेवा करने के लिए कैसे जाता। भले मुख ने भाषण किया, आदि दुआ तुमको मिल जाती। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, छूना चाहिए तो आत्मा को यहां, लेकिन छुआ किसको? क्योंकि पांव ने क्या किया, वो सब आत्मा को वहां लेके आया, इसीलिए छुआ। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, तुमको जाना है तो तुम जाओ, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। मुख अकेले जाएगा? जब तक पांव जाएंगे नहीं तो मुख कैसे जाएगा? तो सारी इंद्रिया आत्मा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, इसीलिए अब इनको सहयोगी बनाना। यह है अखंड राज्य, हर इंद्रिया आत्मा के प्रति रिगार्ड। आज कई माताएं कहते मेरे को कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मेरा कोई मानता ही नहीं। कई माताएं कहते मेरा बच्चा मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसको कोई उसका कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसको ठीक करो, इसको निर्विघ्न बनाओ, सब निर्विघ्न बन जाएंगे। प्रॉब्लम यहां है, हम ढूंढ रहे और जगह पर। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनाना, एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। आज कई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता, क्योंकि इंद्रियां उसको रिगार्ड नहीं देंगी तो हमारे में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आगे चलो, मन के पास, हे मन तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो क्या? इसीलिए मैंने तुमको राज्य में स्थान दिया है। अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। शरीर का पूरा कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्योंकि बुद्धि के साइन के बिना कुछ नहीं होता। समझो मन में विचार चला कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहते हैं ठीक है जाओ। अब जाओ कहते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां चली गई। तो बुद्धि से कभी एकांत में बात करना है, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार तो अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिए, मेरी पूरी राजाई चली गई, मुझे रावण के जेल में डाल दिया, फिर भी बाबा की मेहरबानी बाबा ने आकर के मुझे छुड़ाया। इसलिए हे बुद्धि आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ऐसी अपनी इंद्रियों से बातें करना, ये है सवेरे का दरबार। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले क्या करना है, फिर एक बार दरबार लगा दो। तो राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था तो क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं? सभी ने मैं पूछा था कि राजा कौन कौन बनेगा, तो क्या हर इंद्रिया हमारे श्रीमद प्रमाण चल रहे हैं? और आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका कारण यह है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो यह है सवेरे का दरबार, फिर रात को सोने से पहले कितना बजे, रात को सोने से पहले फिर एक बार दरबार लगा दूं 10 बजे। और सबसे पहले बात करो किसे? कान से। हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी इसलिए धन्यवाद। लेकिन 12 एक बजे को एक माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। तो बताओ तुमको सुनने के लिए मना क्या था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको तुम यहां से जाओ करके, वो सजा नहीं देनी। यहाँ की हमारी सजा अलौकिक है। ये तो वो भक्ति मार्ग में किया ना वो सूरदास, क्या क्या आंखें निकाल दिए, हमें वो नहीं करना है। हमें अलौकिक सजा देनी। कान को कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है इसीलिए तो परचिंतन की बातें सुन रहे हैं, इसीलिए उसको सजा दो। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 4-5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी, तो दुश्मन वहां से बाहर चला जाता। तुमने भी बोला वो माता इसी करते, कई बार मेरे साथ भी ऐसा किया, तुमने भी सहयोग दिया, इसलिए दुश्मन और अंदर आया। इसलिए तुम्हारे लिए सजा, मुख के लिए कौन सी सजा दो? दूसरे दिन मौन, मौन रखने की सजा। यह है राजा, इसलिए हर इंद्रियों पर शासन। और जब हर इंद्रिया श्रीमद प्रमाण चलेगी तब आत्मा भ्रुकुटी आसन पर, जो आत्मिक स्थिति क्यों नहीं बनती उसका कारण है इंद्रियों की अधीनता। जिसकी हर इंद्रिया उसके कंट्रोल में, वो आत्मा ब्रुकुटी आसन पर बैठेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है हर इंद्रिया को द्वारा ठीक कार्य हो रहे हैं, ऐसी आत्मा को बाबा पसंद करेगा। बाबा के दिल पर बैठेगी, और जो संगम में बाबा के दिल पर बैठेगा उसको भविष्य की क्या मिलेगी? राजाई मिलेगी। तो अखंड राज्य राजाई चाहिए, विश्व की राजाई चाहिए, तो अखंड हम स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार हमें ये पुरुषार्थ क्या है, इसी से हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारी योग की स्थिति अच्छी बन जाएगी, हम चाल चलन से भी सेवा कर सकेंगे, वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कर्मेंद्र से कोई भी भूले मत करो, हर इंद्रियों को अपने क्या करो, बस करो। देवी देवता बनने का यह पहला लेसन है, पहला पाठ है। ने तो आए मुरली सुनी अंधेरी नगरी, चौपट राजा टकेशर बाजी टकेशर खाजा, इस नगरी का राजा सोए हैं, इसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, और जो स्वराज्य अधिकारी संगम युग में है वो भविष्य के राजाई के प्राप्त कर सकते हैं। तो राजाई के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, हमारे दो लक्ष्य हैं, एक संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्यु का लक्ष्य। तो संगम युग में हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, ये दरबार लगाना है, इसे गुण और शक्तियां भी आएगी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहते, जब सभी लोग अच्छा काम करेंगे उसके पार्टी के, अगर पार्टी वाला ही कोई गलत करेगा तो उनको फिर गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह आत्मा शांति में ब्रुकुटी में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है। आंखों ने थोड़ा गलत देखा आत्मा की नींद फिट गई, कान ने गलत सुन लिया आत्मा की नींद फिट गई, परेशानी आत्मा को हो जाती है। इसलिए हमें रोज क्या करना है, इसका दरबार लगाना, सजा देना, शिक्षा देना, ये पुरुषार्थ। और इससे फिर आत्मिक स्थिति बनेगी, और उसके लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाने के लिए हमारा अमृत वेला का योग बड़ा हमें काम आएगा। जिन्होंने अमृत वेला का योग अच्छा किए हैं, अमृत वेला योग अच्छा करते हैं, उसकी आत्मिक स्थिति रहती है। जितनी आत्मिक स्थिति है उतना फिर सारा दिन, जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे आपस में लड़ेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे। इसी तरह जब हमारी अमृत वेला अच्छी होती है, क्लास के पहले योग करते हैं, मुरली अच्छी तरह सुन लेते हैं, जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई सारा दिन इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक लास्ट में एक कहानी शेयर करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, बहुत मशहूर था। तो एक सन्यासी उसके पास गया तो उसने देखा कि राजा मशहूर क्यों है। तो उसने देखा कि बहुत कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला, लेकिन एक बात समझ में आई उस सन्यासी के, उन्होंने देखा राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है और उठ करके क्या करता है, हरे के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। इसलिए राजा जल्दी उठने के कारण मंत्री अलर्ट होता है, प्रजा भी अलर्ट होते हैं, सब कुछ ठीक, और इसलिए वो मशहूर था। कुछ समय के बाद उसी सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। तो सन्यासी को लगा ये कैसे हो सकता है। तो दोबारा वो सन्यासी क्या किया, राजा के पास गया, उसने जानने की कोशिश की वो कंगाल कैसे हो गया। बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात समझ में आई, पहले जब आया था राजा की दिनचर्या अलग थी, जब दोबारा देखा तो क्या है, राजा आराम से सोया पड़ा हुआ है। और राजा सोने के कारण क्या हो गया, उसके राज्य में चोर घुसते थे, मंत्री इधर का माल उधर करता था। तब समझ में आया कि अच्छा कंगाली का ये कारण है, अब क्या करें। जो राजा जल्दी उठे। अगर ऐसा जाकर के कहो तो कहेगा तुमको क्या लेना देना, मैं कहीं से सो जाओ चाहे कुछ भी हो। तो सन्यासिनी की युक्ति बताई कि राजन, कहा कि आपने इस महल के आसपास एक हंस आता है, जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो जाएगा, उस हंस के अंदर वो विशेषता है। तो राजा कहता है ठीक है मुझे भी मशहूर होना है। कहा कि तो हंस को देखना पड़ेगा। कहता है ठीक है कल से देखेंगे। लेकिन कहा कि राजन वो हंस सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कहता ठीक है मैं पहले भी उठता था ना फिर उठूंगा। तो राजा रोज उठ करके क्या करता है, वो हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है। अब राजा जल्दी उठने के कारण मंत्री भी अलर्ट हो गए, प्रजा भी अलर्ट हो गए, और राजा सोने के कारण उसके राज्य में चोर घुसते थे माल लेके, तो चोरों ने देखा राजा चक्कर लगा रहे हैं, चलो कल आ जाते हैं। फिर कल देखा फिर राजा चक्कर लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे चोरों ने ना क्या क्या बंद किया, मंत्री अलर्ट हो गए, प्रजा अलर्ट हो गई। अब धीरे धीरे उसकी राजा अच्छी हो गई। फिर वही सन्यासी एक बार उनके पास गया राजा के पास और कहा कि आपने हंस को देखा। कहता हंस को तो नहीं देखा लेकिन मेरी राजा ही बहुत अच्छी हो गई। तो सन्यासी ने कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, अगर आप ऐसे हमेशा अलर्ट हो करके जल्दी उठो आपकी राजा बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी मशहूर थे, अच्छे थे, सत्यों की राजा हमारी बहुत मशहूर थी क्योंकि वहां हर आत्मा एक्टिव था, जागृत था, अलर्ट था और उसके कारण सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे दोपहर के बाद क्या हो गया, राजा खुद सो गया, मैं कौन भूल गया। और राजा सोने के कारण इस शरीर रूपी महल में 5 चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ मोह घुस गए, पूरा राजा को लूट लिया। मंत्री इधर का माल मना मन बुद्धि भी भटकने शुरू हो गए सब कुछ। फिर शिव बाबा ने जैसे वो सन्यासी आता है तो इसी तरह बाबा ने देखा ये राजा ही इतना अच्छा था इसको क्या हुआ, तो समझ गए कि खुद को भूल गया। फिर बाबा आकर के हमको कहता है तुम्हारे इस महल के आसपास, तुम्हारे आसपास में एक फरिश्ता आता है, फरिश्ता मतलब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, तुम उसको देखने के लिए उठो। लेकिन कितना बजे आता है, 2 से 5 तक चक्कर लगाता है और जो उस फरिश्ता को देखेगा उठेगा उसकी आत्म जागृति होगी। जब आत्मिक स्थिति बनेगी तो चोर आना बंद हो जाएगी। जब आत्मा जागृत आत्मिक स्थिति है अमृत वाला करने से तो चोर आना बंद हो जाएंगे। जब चोर आना बंद हो जाएंगे फिर से हमारी राजा क्या हो जाएगी, दोबारा मिलेगी। इसलिए दोबारा राजा प्राप्त करना है, इसलिए इस 2026 में हमें क्या करना है, अपना अमृत वेले के ऊपर अच्छी तरह अटेंशन देना है। सवेरे सवेरे उठ करके हमें अमृत वेला अच्छा करना है, जागृत होकर के करना है, एक्टिव होकर के करना है। उसके बाद अमृत वेला करने के बाद क्लास के पहले भी जाकर के आधा घंटे का योग करना और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर जाकर के सुनना। अगर सवेरे सवेरे 3 धारणा भी आप पक्की करेंगे इसे आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। जब आत्मिक स्थिति बनेगी आपको सारा दिन शरीर में वेव्स फैलते रहेंगे, किरणाएं फैलती रहेंगी, इससे आपको अतींद्रिय सुख मिलेगा। और जिसको अतींद्रिय सुख मिलता है वो कभी भी इंद्रियों के अधीन नहीं होगा। आत्मिक सुख मिलता है वो इंद्रियों के अधीन नहीं होगा, कर्म इंद्रिय चित बन सकता है। इसीलिए हमें अगर अखंड राज्याई लेनी है तो हमें रोज ये दरबार लगाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है और कौन सी कर्मेंद्र धोखा देते उसको सजा देना है, ये पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है आप लास्ट फास्ट जा सकेंगे, भविष्य के राजाई का प्राप्त कर। क्योंकि हम दास दासी बनने के लिए नहीं आए, बाबा का जो योग है राजयोग है, इसमें जो नहीं करते हैं वो अपने आप दासी बनेंगे प्रजा बनेंगे। लेकिन हमें ऊंच पद प्राप्त करना है तो ये पुरुषार्थ करना है। इसलिए रोज अपना दरबार लगाना, चेकिंग करना कि कौन सी कर्मेंद्र मुझे धोखा देते हैं और इस एक एक इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना, इससे आपके द्वारा बहुत सेवाएं होंगी। चलन चाल चलन से भी सेवा होगी, जिसको बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो, अनुभवी बनो। ठीक है, ओम शांति। मैं आत्मा राजा, भ्रुकुटी आसन पर बैठा हूं। मैं आत्मा राजा हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। इन कानों के द्वारा सुनता हूं, मुख के द्वारा बोलता हूं, आंखों की खिड़कियों में देखता हूं। ये शरीर मेरा एक किला है, मैं निर्विघ्न हूं। मैं आत्मा राजा, परम धाम से आकर के इस धरती पर 84 जन्मों का पाठ बजाया। हर जन्म मेरा हीरो एक्टर के रूप में पार्ट था। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पार्ट बजाया। अब युग परिवर्तन की बेला है। ये काल चक्र पूरा हो चुका है। अब मुझे वापिस जाना है। मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं रख करके एक चमकीली प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई। अब मैं आत्मा अपने अव्यक्त वतन में जा रही हूं। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है, जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, बाबा ने मुझे गले लगाया, जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि देते देते मुझ फरिश्ते के मस्तक पर बाबा ने वरदानी हाथ रखा। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। अब मैं अशरीरी विधेयी आत्मा हूं। अपने मूल वतन में जा रही हूं। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में जाती हूं। जैसे मैंने मूल वतन में प्रवेश किया, मैं एकदम जैसी की चार्ज हो रही हूं। मैं बिल्कुल मूल वतन में ऊपर की तरफ जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जाती हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं पावन बनती जा रही हूं। शुद्ध बनती जा रही हूं। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। जिसको देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, बाबा शांति के सागर हैं, शक्ति का सागर हैं, आनंद का सागर है, बाबा के सानिध्य से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, प्यारे बाबा आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले, आपने मुझ आत्मा पर कितना उपकार किए, तीनों कालों का ज्ञान दिया, मैं खुद अपने आप को भूल गई थी, आपने मुझे 84 जन्मों का पाठ पढ़ाया, कौड़ी से हीरा बनाया, जीवन को वैल्यूबल बनाया, दिल चाहता है ऐसे सर्वशक्तिवान के साथ सदा के लिए चिपके रहूं, अब मेरे मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया, बाबा के सानिध्य से मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। इस प्रभु मिलन में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही है। जो सुख मैंने कोई भी जन्म में नहीं लिया, मेरी आत्मा की प्यास बुझती जा रही है। अब ये प्रभु मिलन मना करके स्वयं को शक्तिशाली बना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। प्रकाश के शरीर में ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी हूं। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो। महावीर हो, शिव शक्ति हो, आसुरी संघारनी हूं, कलप पहले भी तुमने माया जीत बन करके युद्ध में विजय प्राप्त की थी, ऐसे करके बाबा ने मुझे स्मृति दी। साथ में ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए दिया। पवित्रता का कवच पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। ब्रुकुटी में विजय का तिलक लगाया।